मेरे अपने आत्मीय जन नमस्कार। आज 24 अगस्त 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है वह कल के ही विषय की अगली कड़ी है और आज हम फिर से एक बार बात करेंगे इमोशनल मैनेजमेंट पर, भावनाओं के प्रबंधन पर। और इस विषय को मैंने क्यों उठाया है, मैंने कल आप लोगों से इसकी चर्चा की थी। और खासकर मैं एक बात यहां बता दूं कि जिस तरीके से मैं यहां भावना प्रबंधन की बात कर रहा हूं और बात करते समय मेरे दिमाग में जिस तरह की भावनाओं के प्रबंधन करने की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से वे भावनाएं ज्यादातर युवाओं से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, स्पेशली एक्सक्लूसिवली जो युवाओं के मन में इस दौर में भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि सामान्य देखिए, लगातार हमारे दिमाग में भावनाएं तो उत्पन्न होती ही रहती हैं। हम बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब पारिवारिक संबंधों को लेकर के, सामाजिक बातों को लेकर के लगातार भावनाओं का उहापोह दिमाग में मचा रहता है। और सच पूछे तो बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जो सब में समान रूप से लागू होते हैं, सब पर आप कह लीजिए लागू हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी कि किन्हीं भावना विशेष से ही, भावना विशेष पर ही उन्हें लागू किया जा सकता है। तो यहां मैं जिन उपायों की बात कर रहा हूं, हालांकि हैं वो बहुत ही सामान्य से उपाय जिन्हें सब पर लागू किया जा सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में जो भावनाएं हैं वे युवाओं से जुड़ी हुई भावनाएं हैं। मित्रों, जैसे कि सामान्य तौर पर मैं कहूं कि अभी 2 महीने बाद ऑलमोस्ट भोपाल में हमारी 15 दिन की क्लासेज शुरू होने वाली है। मैंने ये महसूस किया है कि जैसे जैसे क्लासेज नजदीक आती जाती हैं, उसके दिन नजदीक आते जाते हैं, युवाओं के दिल और दिमाग में एक थोड़ी सी हलचल सी शुरू हो जाती है। हलचल सी इस मायने में जाएं न जाएं, जाएंगे तो क्या इंतजाम होगा, चलिए इंतजाम के बारे में भी आपको पता लग जाता है या उस पर आपको भरोसा है, तो फिर सब जर्नी कैसी होगी, तकलीफ होगी, हमारा गांव छूट जाएगा, हमारे लोग 15 दिन के लिए छूट जाएंगे, हमारे प्रियजन से हम अलग हो जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं और वो धीरे 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 बढ़ती बढ़ती आपको कमजोर कर देती हैं और फिर फैसला आप कुछ ऐसा ले बैठते हैं कि यार चलो अब अगली बार देखा जाएगा। मुझे मालूम है कि इस तरह के विचार आते हैं और ये केवल मैंने उदाहरण अभी मेरे मुंह से अचानक क्लास का ही निकल गया, हर मामले में होता है। आपको गांव छोड़कर शहर पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, तब भी दिमाग में यही उहापोह है। छोटे शहर को छोड़कर बड़े शहर में जाना पड़ रहा है, तब दिमाग में यही उहापोह होता है। नौकरी ज्वाइन करने के लिए फिर से जगह छोड़नी पड़ रही है, तो इसी तरह के संकट आते हैं, है ना। और जो फिर हार्मोन्स के कारण जो अट्रैक्शंस होते हैं, जो प्रेम की भावनाएं होती हैं, वे सारी वजह हैं जो हमारे दिमाग में एक तरीके से लहरें लगातार पैदा करती रहती है। दिमाग में क्या, दिल और दिमाग में लगातार पैदा करती रहती हैं। इनका इलाज क्या है? देखिए, इनका इलाज तो करना पड़ेगा, बिना इलाज की ये बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये मानकर चलिए, मतलब मुझे इस बारे में कम से कम कोई संदेह नहीं है, और वो ये कि ये जितनी भी भावनाएं उठ रही हैं, भले ही तात्कालिक रूप में ये लॉजिकली भी सही लगे, लेकिन अंततः ये सही होती नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लॉजिकली भी भले ही तात्कालिक रूप में, यानी कि उस समय जब ये भावनाएं उठ रही हैं और आप इनके बारे में विचार कर रहे हैं, तो उस समय आपको वो सही लग सकती है। और मजेदार बात है कि हमारा दिमाग इन भावनाओं को सही ठहराने के लिए दुनिया भर के तर्क वितर्क कुतर्क लेकर के भी आता है, लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी जरूरत होती है सतर्कता की, वो सतर्क नहीं हो पाते हम। क्योंकि ये एक तरीके से जितनी भी भावनाएं हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि जो स्वर्ण मृग का प्रसंग है रामचरितमानस में, वो कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं है। सोने का मृग तो होता ही नहीं है, लेकिन चलिए सोने का मृग दिखाई दिया, तो जिस पर हमें डाउट होना चाहिए था उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है, आप देखा, और फिर उसका नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं। तो हमारी जो तात्कालिक इस तरह की भावनाएं हैं मित्रों, इनका कोई आधार नहीं है, इसीलिए इन्हें कल मैंने लिक्विड फॉर्म में कहा है। चाहे वो हमारे अंदर के हार्मोनल का प्रभाव है, चाहे जो तकलीफ होने जा रही है अभी, जैसे मैंने क्लासेस का उदाहरण दिया, उस तकलीफ से थोड़ी देर के लिए मुक्ति पा लेने के उपाय के रूप में है, जिस भी उपाय के रूप में हो, काम जो हम कर रहे हैं उसे टालने के लिए है, जैसे कि कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जितने भी भाव जगत में हमारे दिमाग में तरंगें उठती हैं, सच पूछे तो उसकी इनफैक्ट रियल रैशनलिटी नहीं होती। मैं रैशनलिटी के बाद अब रियल रैशनलिटी की बात कर रहा हूं। हम तर्क ढूंढ लेते हैं लेकिन वो वास्तविक तर्क नहीं होते। तो सबसे पहला जो मुझे उपाय मालूम पड़ता है फ्रेंड्स, वह है कि हमें तर्क के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, बावजूद इसके कि मैं ये कहता हूं कि भावनाओं के भी अपने तर्क हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भावनाएं बिल्कुल यूजलेस ही होती हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि ये जो भावना है इसका जन्म कहां से हुआ है, कितनी देर के लिए ये रहेगा, और समाज में या हमारे यथार्थ जीवन में इसका स्थान कितनी, इसका स्थान क्या है। तो जब आप अपने तर्क को इस रूप में देखने और समझने की कोशिश करेंगे, भावनाओं को इस रूप में देखने की समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि तर्क को भी समझिए, भावनाओं को भी समझिए, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, अप्लाई कीजिए, एक दूसरे से मिलाइए, नापिए, तौलिए, जांचिए, परखिए, तो आपके सामने आपका कोई ना कोई उत्तर, कोई ना कोई समस्या का समाधान बिल्कुल उपस्थित हो जाएगा। दोस्तों, जिसे हम अर्जुन की समस्या कहते हैं, युद्ध क्षेत्र में जो समस्या अर्जुन की पैदा हुई थी, आपको क्या लगता है, वो एक इमोशनल प्रॉब्लम ही तो थी, पूरी तरह से एक इमोशनल प्रॉब्लम थी। तो इस इमोशनल प्रॉब्लम का समाधान बताया क्या गया है, आप देखिए कि कृष्ण कुछ नहीं करते हैं, कृष्ण केवल समझाने की कोशिश करते हैं, राइट, मतलब जिसको आप साइकोथेरेपी कह लीजिए। अदरवाइज कृष्ण दूसरे उपाय भी कर सकते थे, कृष्ण को तो हम भगवान मानते हैं, चमत्कार कर सकते थे, और बिल्कुल अर्जुन के जो विचार आ रहे हैं उन्हें अपने किसी जादुई शक्ति से, अलौकिक शक्ति से बिल्कुल उलट सकते थे। कि उसके पहली बात तो यह है कि वो यही कर सकते थे कि इसके अंदर ये विचार ही नहीं आए, उनको समझ जाना चाहिए था कि अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह सुबह ये बखेड़ा खड़ा कर देगा, तो भगवान थे, उनको तो इतनी समझ हो जानी चाहिए थी, अगर हम भगवान को इस रूप में देखते हैं तो उनको पूर्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, तो क्या उनको पूर्व ज्ञान नहीं हुआ, और अगर पूर्व ज्ञान नहीं हुआ तो उन्होंने जानबूझकर उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, अगर पूर्व ज्ञान हो भी गया था तो उन्हें बताया नहीं, या जो कुछ भी कह लीजिए। आप तर्क वितर्क तो ऐसी ही चीज होती है कि ढेर सारी बातें आप दिमाग में लेकर आ सकते हैं। तो मित्रों, कृष्ण ने समझाने का दायित्व तो संभाला कि नहीं, अब अर्जुन के दिमाग में ये जो फितूर खड़ा हुआ है उठकर, इसे मैं समझाता हूं। और अब फिर आप देखिए कि कैसे तर्क वितर्क का जाल बुना जाता है, जाल नहीं कहना चाहिए बल्कि तर्क वितर्क के माध्यम से समझाने की कोशिश होती है, और अर्जुन लगातार सवाल पर सवाल किया जाता है, और कृष्ण बड़े धीरज के साथ, बीच बीच में आपको शब्द पढ़ने को मिलेगा कि कृष्ण मुस्कुराए, उस तरीके से वो उसके जवाब देते हैं, और अंततः अर्जुन समझ जाता है। तो मित्रों, ये है तर्क। दूसरी जो मैं बात से बात करना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप इमोशंस के चार्ज में हो, भावनात्मक उद्वेग की जब स्थिति हो, तो प्लीज डोंट टेक एनी डिसीजन, उस समय कोई निर्णय मत लीजिए, याद रखिए, प्लीज डोंट टेक एनी डिसीजन, कोई निर्णय मत लीजिए, रुकिए, मानकर चलिए कि अभी तक आपने किसी भी ऐसे तूफान के बारे में नहीं सुना होगा, मैं मिथक कथाओं की बात नहीं कर रहा हूं, कि जो आया हो और टिका रह गया हो, फिर तूफान आता ही चला जा रहा है, नॉट एट ऑल, ऐसा कोई तूफान नहीं होता, ऐसी कोई आंधी नहीं होती। तो ये जो अंदर आपके मेरे जो तूफान उठता है, तो हम करें क्या, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तब आप जहां हैं वहां पकड़कर किसी खंभे को खड़े हो जाइए, बच जाएंगे, डिसीजन मत लीजिए, भागने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ उड़ जाएंगे, डोंट टेक एनी डिसीजन, आप रुकिए और उसके गुजर जाने का इंतजार कीजिए कि ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा गुजर जाने देता हूं, और आप देखेंगे कि जब वो तूफान गुजर जाएगा, जब वो आंधी गुजर जाएगी, यानी कि जब आपका भावनात्मक उद्वेग कम हो जाएगा, उसको तो कम होना ही है, वो एक जैसा रह ही नहीं सकता। मित्रों, कुछ अनुभव तो आपका भी है, मैं कौन सी बड़ी नई चीज आपसे कह रहा हूं, आप भी इस बात को जानते हैं कि क्या हमेशा आप उसी भावनाओं के ज्वार और भाटे के ऊपर चढ़ते और उतराते रहते हैं, ऐसा नहीं होता ना, आप भी जानते हैं कि उतरता है। जब वो उतर जाएगा तो यूं कह लीजिए कि अब कुहासा छट गया है, तार्किक रूप से आपको अब चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, अब आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, डोंट टेक एनी डिसीजन एट दैट मोमेंट, उस क्षण में आप कोई भी निर्णय मत लीजिए। तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कि इस बात पर भरोसा रखिए, इस बात पर भरोसा रखिए कि ये जो प्रकृति है ये परिवर्तनशील है। अभी आप जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी अवस्था में, अति उत्साह की अवस्था में, अति प्रेम की अवस्था में, अति आवेग की अवस्था में, अति निराशा और हताशा की अवस्था में, सब जगह अति लगा हुआ है, और अति ही तो है जिसने इमोशनली आपको चार्ज्ड कर दिया है, ये सब अति है। और याद रखिए कि ये प्रकृति का नियम है कि बदलाव होंगे ही होंगे, ये चीज टिकने वाली नहीं है। अब ये बात अलग है कि जो बदलाव होंगे वो बेहतर होंगे या बदतर होंगे, लेकिन फिर भी देखा यह गया है कि ये जो अति की स्थिति है, इसके बाद जो बदलाव होते हैं वो बुरे तो नहीं होते हैं। या मैं इसे यूं कहना चाहूंगा कि यदि हम अति की स्थिति में कोई निर्णय ले लेते हैं और उस निर्णय के जो परिणाम होंगे उससे तो ये बेहतर होगा, जो अपने आप जो बदलाव होंगे उसकी स्थिति बेहतर होगी। जब आपको इस बात पर भरोसा हो जाता है कि मेरी अभी जो निराशा हताशा है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, मेरा जो आवेग है, जो उद्वेग है, ये हमेशा टिका नहीं रहेगा, मैं थोड़ा सा इसे अवसर दे दूं, ये अपने आप कम हो जाएगा, और अगर मैं तर्क का सहारा लेता हूं तो डेफिनेटली उसे जल्दी से जल्दी कम करने में मदद मिलेगी। तर्क केवल यही करता है कि उसे जल्दी से जल्दी वो खारिज करता है ना, उसकी जल्दी से जल्दी वो सफाई कर देता है। हम रुक जाते हैं बदलाव पर भरोसा करके, तो फिर वो धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया के तहत वो उतरने लगता है, लेकिन आपको उसमें वक्त लगेगा और वक्त दिया जाना चाहिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो अपनी ढलान पर आ रहा है, और जब ढलान पर आ रहा है तो अब आपको अंदर से अच्छा लगने लगा है, और जब अच्छा लगने लगा है तो फिर अब आप सोच समझकर जो भी आपको निर्णय लेना है अब निर्णय लीजिए। निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा और लेना ही चाहिए, क्योंकि बिना निर्णय के तो फिर स्थिति बिल्कुल थम सी जाएगी, रुक सी जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अब निर्णय लीजिए, क्योंकि अब आपके जो भी इमोशंस थे उन इमोशंस को आपने मैनेज कर लिया है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको तीन बिंदु मुख्यतः बताए हैं। देखिए, बिंदु तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी जो मीडियम है, जिस मीडियम के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप तक पहुंचता हूं, उस मीडियम में केवल बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ही बातें की जा सकती हैं, तो मैंने कुछ बातें की हैं। आप लोग भी अपने सुझाव मुझे दें, इससे मुझे सीखने और जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।